ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 और 5 जिसमें भगवदीय भक्त अमरीश महाराज का ख्यान है। बहुत सुंदर उपदेश है दो अध्यायों में कि भगवान के भक्त कितने बड़े होते हैं। लगते हैं बहुत विनम्र लगते हैं होते हैं, इसीलिए लगते हैं कि वो सामान्य मनुष्य है, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी कीर्ति है। चैतन्य देव रामानंद राय को पूछते हैं सवाल, सबसे बड़ी कीर्ति क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त की कीर्ति है वो सबसे बड़ी कीर्ति है। तो ऐसे ही ये अमरीश महाराज थे। तो इस अध्याय में महाराज नभग एवं उनका पुत्र नाभाग और उनका पुत्र अमरीश महाराज का इतिहास है। मनु भगवान के पुत्र थे नभग, उनका पुत्र नाभाग और उनका पुत्र अमरीश महाराज। ये वैदिक वंश भी जानना चाहिए, वंश से हमें परिचय मिलता है कि कितना बड़ा चढ़ा व्यक्ति है। और दोनों जो व्यक्ति हैं आपस में वार्तालाप करते हैं तो हमें वो वार्तालाप का महात्म्य इन पहचान से हमें पता चलता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण दोनों का वार्तालाप है भगवद गीता, तो दोनों अपने आप में महान विभूति हैं, महान व्यक्ति। तो महान व्यक्तियों का वार्तालाप तत्व से परिपूर्ण होता है, ज्ञान से परिपूर्ण। तो इसी तरह यहाँ मनु का पुत्र नभग, नभग और नभग का पुत्र नाभाग। तो नभग राजा ने अपने पुत्रों में पृथ्वी का राज्य बांट दिया। तो उन दौरान नाभाग उनका एक पुत्र था, वो गुरुकुल में था और गुरुकुल में वो ज्यादातर रहा। तो पुत्रों ने आपस में सारा राज्य बांट लिया, लेकिन नाभाग के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा, उनका भाग भी उन लोगों ने बांट लिया। तो जब नाभाग वापस आते हैं घर तो देखा कि उनके लिए कोई भाग नहीं है राज्य का। इतना ही नहीं, उनका भाग के लिए जो बूढ़े पिता थे उनको भी उनको दे दिया। एक तो राज्य नहीं दिया और ऊपर से पिता को दे दिया। तो ये भौतिक संसार है, भौतिक संसार में सब भौतिक चीजें अपनी बना लेते हैं। और जो आध्यात्मिक बेटा था गुरुकुल में उनके लिए कुछ नहीं, और पिता को भी ऑन टॉप दे दिया। तो पिता नाभाग पुत्र को कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि ये जो यज्ञ होते हैं उसमें आप दो मंत्रों का उच्चारण करो तो यज्ञ का हिस्सा आपको मिलेगा। तो ये नाभाग यज्ञ में भाग लेने लगे और मंत्रों उच्चारण से, बड़े बड़े मुनि करते थे ये यज्ञ, अंगिरा मुनि वगैरह, बहुत महान मुनि अंगिरा, नारद मुनि के मित्र है। Man is known by the company he keeps, अंगिरा मुनि। तो अंगिरा मुनि ने उनको यज्ञ का सारा हिस्सा दे दिया। तो शंकर भगवान ने सोचा कि ये सारा यज्ञ का भाग ना भाग को दे दिया तो उनकी परीक्षा करने के लिए शंकर भगवान आए। शंकर उनकी परीक्षा लेते हैं और बाद में सारा जो उनको प्राप्त हुआ था नाभाग को, ये सारा कहते हैं मेरा हिस्सा है और आपने हड़प कर लिया। तो नाभाग सारा धन शंकर को समर्पित करते हैं। तो शंकर भगवान खूब खुश हो गए और उनको ये सारा धन वापस करते हैं नाभाग को। तो ये नाभाग उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, वो है अमरीश महाराज। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को सवाल करते हैं कि मुझे ये अमरीश महाराज का ख्यान सुनाइए ताकि शुद्ध भक्तों की कथा सुनने से मैं पवित्र हूँ हो जाऊँ। तो श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजो उवाच, परीक्षित का प्रश्न है, भगवान पुच्छो तुम इच्छामि राजर्षेस तस्य धीमतः न प्राबुध्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरत्यया। ब्रह्म ब्राह्मण, दंड उनका दंड, ब्राह्मण का दंड, ब्राह्मण की पनिशमेंट। ब्राह्मण कौन है? दुर्वासा। ते दुर्वासा मुनि ब्रह्मा ब्राह्मण का दंड दुरत्य है। तो ये अमरीश महाराज को ये साप, दुर्लभ्य साप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सका। तो ये आख्यान मुझे आप सुनाइए सचरित्र। तो श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अमरीशो महाभाग सप्त दीप वर्तिम महिम अव्ययाम च श्रियाम लब्ध्वा विभवम च अतुलम भुवि। अमरीशो महाभाग, अमरीश महाराज, महाभाग, महाभाग्यवान अमरीश महाराज, सप्त दीप वतिम भूमिम महिम, महिम भूमि, सप्त दीप वाली ये भूमि कैसे? अव्ययाम च श्रियाम लब्ध्वा, खाली भूमि नहीं सारी पृथ्वी, लेकिन असीमम, अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, श्रियम लक्ष्मी, श्री लब्ध्वा उनको मिले। और वो लक्ष्मी कैसी थी? अव्ययम, कभी भी खुटने वाली नहीं थी, इतनी मात्रा में उनके पास लक्ष्मी थी। अव्ययाम श्रियम लब्ध्वा विभवम च अतुलम भुवि, विभवम ऐश्वर्य वैभव, सारी भूमि का उनको वैभव प्राप्त था। मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशंति यत पुमान। दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत् स्वप्नवत् संस्तुतम, स्वप्नवत् संस्तुतम, सारी भूमि का राज्य मिलने पर भी महाराज अमरीश उससे विरक्त थे, विरक्ति। कहते हैं यहाँ तत् स्वप्नवत् संस्तुतम, ये सारा भौतिक राज्य जो है वो स्वप्न जैसा है, स्वप्नवत् संस्तुतम, और उनमें ये आसक्त नहीं हुए। विसति तमा, तमा विसति, ये सब जगत तमा है, अंधकारमय है, अविद्या है, जड़ है, माया माया में है, इसलिए ये जगत में वो आसक्त नहीं रहे। इतनी अव्ययम श्रियाम लब्ध्वा, अव्ययम श्रियाम लब्ध्वा, और सप्त द्वीपम महिम, सात द्वीपों वाली सारी पृथ्वी के राजा, लेकिन उनको स्वप्नवत समझते हैं। ये तो स्वप्न, ये संसार स्वप्न है। जैसे स्वप्न में कोई भी चीज हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, भोगते हैं, ये फिजूल का, ये सत्य नहीं है। इसी तरह इतना सप्त द्वीपम महिम लब्ध्वा, सात द्वीपों वाली पृथ्वी का राज्य मिलने पर भी वो उनमें आसक्त नहीं हुए। तो कैसे उनकी दिनचर्या क्या थी, तो ये आगे बताते हैं। कहते हैं वासुदेव भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम एनेदम लोष्टवत स्मृतम। वासुदेव भगवती, वासुदेव श्री कृष्ण में उनकी भगवती भक्ति थी, उच्च कक्षा की भक्ति, शुद्ध भक्ति। वासुदेव भगवती, इतना ही नहीं तद भक्तेषु, वासुदेव के भक्तों में भी उनकी भक्ति उच्च प्रकार की थी, शुद्ध भक्ति। अकेले भगवान का पूजन गलत है, अकेले श्री कृष्ण का पूजन गलत है, और अकेले उनके भक्तों का पूजन भी गलत है। भगवान की उपासना भक्ते सहित, राधा कृष्णा सीता राम लक्ष्मी नारायण भक्त हैं, लक्ष्मी राधा रानी सीता रानी भक्त हैं, दोनों की भक्ति। तो यहाँ अम्बरीश महाराज वासुदेवे भगवती, इतना ही नहीं वासुदेव में भगवती भक्ति, इतना ही नहीं तद भक्तेषु, वासुदेव के भक्तों में भी इतनी ऊंची भक्ति, तद भक्तेषु, इतना नहीं च साधुषु, साधुओं में भी ऊंचे प्रकार की भक्ति। तो आजकल ये फैशन है गुरुओं में कि गुरु ही भगवान, और राधा कृष्णा राम की मूर्ति या छवि या पिक्चर कुछ नहीं, गुरु बस, खाली गुरु की उपासना, ये बाबा बापू और वगैरह वगैरह। बाबा का तो अभी फैशन चली है, बाबा की और शनि देव की फैशन। तो ये वैदिक धर्म का शिक्षण नहीं है। वेदों शास्त्रों में हमें जो भगवान की पहचान है वो भगवान की उपासना, और वो है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च आंश कलापुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। सारे अवतार भगवान के नैरेट किए, सारे अवतारों का वर्णन किया, निरूपण किया, 24 मुख्य अवतारों का, और बाद में कहा कि अवतारों की कोई संख्या नहीं, अनगिनित अवतार। सरसी, सरसी शब्द उपयोग किया, सर सर का अर्थ है तालाब, झील, सर अमृत, सर सर सरसी में जितने वेव्स, जितने रिपल्स, जितने लहरें आती हैं, इतने अवतार हैं भगवान के। लेकिन शास्त्र युक्त अवतार होना चाहिए। शास्त्रों में बुद्ध भगवान आने वाले थे 250 साल बाद, जबकि भागवतम 2500 साल पहले भागवत की रचना हुई थी। तो वेदव्यास ने लिखा कि बुद्ध भगवान आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, शास्त्र युक्त मनमाना भगवान नहीं। तो इसी तरह शास्त्रों में लिखा है कौन से समय में कौन सा अवतार आएगा। तो अम्बरीश महाराज वासुदेव भगवती, वासुदेव श्री कृष्ण में उनकी अखुट उत्तम भक्ति थी। तद भक्तेषु च साधुषु, तद भक्तेषु च साधुषु, साधुओं में भी अम्बरीश महाराज की इतनी ही शुद्ध भक्ति थी। प्राप्तो भावम परम विश्वम, और ये साधुओं में, भक्तों में और भगवान में उनका कैसा भाव था, परम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। परम भाव का अर्थ है कि भक्त ये परम पूजनीय है, तस्माद्येयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम्। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरी तरह ही पूजनीय है। तो ये है परम भाव। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मनुष्य मेरा परम भाव नहीं जानता, भगवान श्री कृष्ण का। अर्थात श्री कृष्ण ये भगवान है, अजर अमर है, सत सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद घन है, अर्थात उनका शरीर भी सच्चिदानंद, वो खुद भी सच्चिदानंद, उनका आत्मा, उनका हर लिम्स, इनका हर अवयव या तो इंद्रियां सच्चिदानंद कहते हुए दिव्य, उनका नाम लीला गुण रूप धाम सब दिव्य है। ये परम भाव, श्री कृष्ण का परम भाव, परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम, परम भाव एनेदम लोष्टवत् स्मृतम। अमरीश महाराज श्री कृष्ण में और उनके भक्तों में परम भाव रखते थे, इसलिए उनको ये भौतिक जगत लोष्टवत् लगता था। लोष्ट मिट्टी, लोष्टवत् मिट्टी जैसा, मिट्टी की कोई कीमत नहीं, उसी तरह ये भौतिक जगत की कोई कीमत नहीं। लोष्टवत् स्मृतः, तो ये परम भाव दोनों में, परम भाव भगवद गीता में ये शब्द आया है, परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धू लोग होते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़, मूढ़ का अर्थ है बुद्धि जिसमें कम है, अवजानन्ति मेरी अवगणना करते हैं, अवहेलना करते हैं कृष्ण की। क्या अवहेलना? कि ये तो पॉलिटिशियन है, कुरुक्षेत्र में या तो कौरवों के पांडवों के बीच में एक पॉलिटिशियन, या तो मनुष्य है, कृष्ण ये मनुष्य जैसे है, राम कृष्ण हमारे जैसे है। हमारा शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का भौतिक शरीर, तो श्री कृष्ण राम का शरीर भी भौतिक, उनका भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का शरीर है। तो उनकी अवहेलना है, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझे मूढ़ लोग जानते नहीं है। क्यों? परम भावम अजानंतो, मेरा परम भाव वो जानते नहीं है। परम भाव सच्चिदानंद भाव, अद्वैत कृष्ण का शरीर और कृष्ण अद्वैत है, अलग नहीं है। हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग है, शरीर हमारा भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, लेकिन कृष्ण का शरीर और उनका आत्मा और इनका नाम रूप लीला गुण धाम सब दिव्य आध्यात्मिक दिव्य परम भावम। ये परम भाव कृष्ण, ये अवतारों के अवतारी मूल स्रोत हैं, ये परम भाव। यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तत्व से श्री कृष्ण को जानना चाहिए, परम भावम परम भाव, ये सब भगवान श्री कृष्ण का है, आध्यात्मिक और भौतिक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा बुद्धिमान भाव समन्विता। ये कृष्ण का परम भाव है, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक और भौतिक मुझसे उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते, और ये सब सचराचर आध्यात्मिक और भौतिक मुझ में से आता है। मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, ये मत से, ये जानने से, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता प्राप्तो भावम परम विश्वम प्राप्तो भावम। तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह अमरीश महाराज जानते थे, परम भाव। इतना ही नहीं, उनके भक्तों में भी परम भाव, इतना ही नहीं साधुओं में भी परम भाव, अलौकिक भाव। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार दोहराता हूं कि उनके घर दुर्वासा मुनि आते हैं, न साधु थे न भक्त थे, ध्यान दो, दुर्वासा मुनि भक्त नहीं थे, लेकिन अमरीश महाराज भक्त थे। क्यों? वो कृष्ण में, कृष्ण के भक्त में और साधुओं में परम भाव देखते थे। जमाना बदल गया है, बिगड़ गया है। कोई भी साधु घर पर आएगा तो उनको भगाने की कोशिश, या तो उनको इग्नोर, उनको, ये जमाना है अभी। और ब्राह्मण भी बिल्कुल जीरो हो गए। ब्राह्मण ड्राइविंग करने लगे, नौकरी करने लगे, सब कुछ करने लगे। क्यों? कि आजकल भक्तों में परम भाव, साधुओं में परम भाव, बिल्कुल जीरोवत, बिल्कुल शून्यवत। इसलिए ब्राह्मण समाज टूटा, इसलिए हमें ब्राह्मण बनना पड़ा। इस्कॉन ब्राह्मण पैदा करती है, इसीलिए निरपेक्ष ब्राह्मण, आपसे कोई अपेक्षा नहीं, तभी ही हम आपको दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। आपसे अगर कुछ अपेक्षा होती तो आपका मस्का लगाना पड़ता, लेकिन निरपेक्ष ब्राह्मण आपकी भलाई के लिए सब कुछ कहना है, वही शास्त्रयुक्त कहेगा, मस्का नहीं। तो ये परम भाव ब्राह्मणों में, साधु में, भक्तों में, भगवान में अमरीश महाराज ये परम भाव देखते थे। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादुसु श्रुतिम चकर अच्युत सत कथोदये। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो, अमरीश महाराज ने परम भाव उनको था तो क्या करते थे कि अपनी सब इंद्रिया, एकादश इंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और ग्यारहवा मन, ये सब इंद्रिया अमरीश महाराज ने श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त प्रवृत्त की थी। सवई मना पांच ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और पांच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, दो मल मूत्र की, प्रजननेन्द्रिय और गुदा, और वाणी, ये कर्मेंद्रिय है, और ग्यारहवा मन। तो अमरीश महाराज ने सब इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा के लिए, नो ससेशन, तेल धारावत भगवान श्री कृष्ण में प्रवृत्त करके रखते थे। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो, ये श्लोक हर रोज गुनगुनाने से आपको आध्यात्मिक कल्याण मिलेगा। मुक्ति की तो बात ही नहीं है, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम मिलेगा। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो, अमरीश महाराज ने अपना मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में रखा। स वै उन्ने, स उन्ने अमरीश महाराज ने, स वै सर्टनली, वै का अर्थ है ही, निश्चित रूप से। सवै मन अपना मन कृष्ण पदारविंदयो, मन ये भौतिक है और मन हमेशा गंदी चीजों में ही लगा रहता है। मन की परिभाषा है विचारों का सतत प्रवाह, ये मन है। उनका कार्य है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, स्वीकार करना और दूसरी क्षण उनको अस्वीकार करना। एक्सेप्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन के लक्षण, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो ये मन है। मन इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। इंद्रियाणि परण्याहुर, इंद्रिया इंद्रियों के विषय से पर है। इंद्रियों के विषय कितने हैं? पांच ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय के पांच विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय है। तो इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मन, इंद्रियों से पर मन है। हम मन की बात कर रहे हैं, तो ये मन क्या है ये समझ रहे हैं हम। बाद में ये मन को हम लगाएंगे श्री कृष्ण के चरणों में। तो मन क्या है? इंद्रियाणि परण्याहुर। इंद्रिया इंद्रियों के विषय से पर है, ऊपर है। विषयों का बॉस, विषयों का मालिक कौन है? इंद्रिया। और इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा। मात्रा स्पर्श, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय में स्पर्श होने से उसमें से सुख और दुख पैदा होता है, विचार पैदा होता है। विचार मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, ये शीत है, ये उष्ण है, ये विचार पैदा होता है। मात्रा विषय, मात्रा अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्पर्श इंद्रियों के साथ ये विषयों का स्पर्श, तो उससे क्या होता है? एक विचार पैदा होता है। तो ये विचार हमारे अंदर मन में जाता है, तो ये मन है विचारों का सतत प्रवाह। विचार कैसे पैदा होता है? मात्रा स्पर्श, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका रिस्पेक्टिव सेंसेस, रिस्पेक्टिव इंद्रिय के साथ स्पर्श होने से उसमें से विचार पैदा होता है। और ये विचार का सतत प्रवाह उनको बोलते हैं मन। उदाहरण, आप दिल्ली में परोठा गली में जाओगे, पकोड़ा परोठा, सुंदर स्मेल आएगी, सुगंध। तो सुगंध परोठा पकोड़ा की सुगंध नाक, गंध नाक को स्पर्श करती है, तो उसमें से विचार पैदा होता है, चलो भूख लगी है तो पकोड़ा परोठा की ओर। तो ये विचार पैदा होता है, मन में जाता है, बाद में ये विचार आपको ले जाता है जहाँ जाना है। तो ये विचारों का सतत प्रवाह, ऐसे कान शब्द, कोई म्यूजिक, कोई फिल्मी स्थान गाना कुछ हो रहा है, तो आपका कान उस तरफ खींचेगा। उस तरह आंखें, कोई सुंदर ऑब्जेक्ट, सुंदर स्त्री, सुंदर कुछ भी झांकी जा रही है, तो आंख उससे स्पर्श करेगी, उसमें से सुख दुख पैदा होगा, सुख दुख। तो ये विचार पैदा ऐसे होता है, विचारों का सतत प्रवाह उनको बोलते हैं मन। तो ये विचार का सतत प्रवाह, अगर धीरे धीरे विचार आते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो मन की परिस्थिति निर्मल रहती है। और जल्दी जल्दी विचार आते हैं तो मन प्रदूषित हो जाता, बेचैन, जल्दी जल्दी विचार। जैसे रिवर सरिता, नदी, जब मॉनसून सीजन में, वर्षा ऋतु में, जब नदी बाढ़ से चलती है, तेज से चलती है, तो पानी उनका कैसा निर्मल, उनका पानी मड़ी होता है, पानी बहुत मड़ से युक्त। लेकिन समर में धीरे 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 नदी बहती है, तो उनका पानी समर में बिल्कुल निर्मल होता है, धीरे धीरे। इसी तरह प्रवाहों, विचारों का प्रवाह अगर धीरे 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 है, जैसे हम माला करते हैं, विचारों का प्रवाह बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत, तो हम खर्राटा भरने लगते हैं, है ना, सो जाते हैं, माला करते करते लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती। क्यों? मंत्र, मन त्राणायते इति मंत्र, मन को शांति दे उनको बोलते हैं मंत्र। तो मंत्र जप करते हैं, मन को मुक्त करे वो मंत्र, तो मंत्र करते हैं हम, तो मन शांत, विचारों का प्रवाह शांत, हम मन, हम इंद्रियां सब कुछ एकत्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, तो मन शांत हो जाता। तो इसी तरह विचारों का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, तो मन शांत, और विचार एक पर एक विचार, एक पर एक विचार, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये करना है, वो करना है, वहां भागना है, यहां दौड़ना है, तो मन बेचैन प्रदूषित रहेगा। ज्यादातर विचार, एक विचार नहीं आया उसके बाद दूसरा तुरंत, तीसरा, तो मन व्याकुल हो जाएगा। तो ये है मन। और मन का राजा है बुद्धि। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिरियो। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि। बुद्धि से मन को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धि की परिभाषा है डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, अच्छा बुरा जांचने की जो शक्ति है उनको बुद्धि कहते। तो मन इधर उधर भागेगा तो हम बुद्धि से स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मन को बुद्धि से नियंत्रित कर सकते, और बुद्धि के ऊपर आप खुद हो। सह परा बुद्धि रियो बुद्धे है परसस्तु सह। इंटेलिजेंस इज दी परसस्तु सह। तो ये हमारे शरीर की हायराकी है, क्रम है। विषयों से इंद्रिया पर, इंद्रियों से मन पर, मन से बुद्धि पर, बुद्धि से आत्मा आप हम पर। लेकिन ये क्रम उल्टा चलता है। मैं गोदास, इंद्रियों का दास, मन का दास, बुद्धि का दास, गोस्वामी बनना चाहिए। ये गोस्वामी बनने की रीत अमरीश महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी बनना चाहिए। तो ये मन गंदा है और कृष्ण के चरणारविंद परम पवित्र। तो इसीलिए गंदे मन को अगर परम पवित्र श्री कृष्ण चरणारविंद में रखोगे तो मन भी वो संग होने से परम पवित्र हो जाएगा। बहुत सरल बात है। इसलिए सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, बजहू रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। क्योंकि चरणारविंद अभय देने वाले हैं। चरणारविंद कृष्ण चरणारविंद ए परम दिव्य सच्चिदानंद है, और मन उन पे लगाने से मन भी सच्चिदानंद परम पवित्र हो जाएगा। इसलिए सवै मन कृष्ण, इसलिए अमरीश महाराज ने अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में प्रवृत्त रखते थे, हमेशा प्रवृत्त। सवै मन कृष्ण पदारविंदियो, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हे मन श्री नंद नंदन का चरणारविंद का भजन कर। क्यों? अभय चरणारविंद रे, चरणारविंद अभय दान देने वाले हैं। इसलिए हे मन, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे मन तू कृष्ण के चरणों में हमेशा रह, वहां आपको अभय दान मिलेगा। तो ये मन का स्वभाव है, भौतिक है मन, मन भौतिक है। इसलिए मन का स्वभाव है कि वो हमेशा गंदी चीजों में ज्यादातर प्रवृत्त रहेगा। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथिनो बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर एव दुष्करम। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, वो भटकता है और ज्यादातर गंदी चीजों में ये रहता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथिनो बलवत दृढ़म, और प्रमाथी है बल, बल जबरी से मुझे खींच जाता है, गंदी चीजों में खींच लेता है जबरदस्ती से। मुझे नहीं चाहिए लेकिन जबरदस्ती से खींचता है। प्रमाथिनो बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये, मैं उनका निग्रह उसको कैसे काबू में रखूं वो मैं नहीं जानता। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर एव दुष्करम, ये वायु टॉर्नेडो हरिकेन आधी आधी आती, तो वायु बहुत बलवान वायु होता है, वो वायु को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये वायु को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। टॉर्नेडो बोलते हैं उनको, टॉर्नेडो हरिकेन आदि। वायोर एव दुष्करम, वायु से भी इनका निग्रह करना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो मनो दुर्निगम अचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च उच्यते, अभ्यासेन वैराग्येन, कॉन्स्टेंट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, वैराग्य और अभ्यास, जहां भी मन भटकता है वहां से मन को वापस लाके श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवृत्त करना चाहिए। एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत्, एन केन प्रकारेण, कोई भी प्रकार से मन को श्री कृष्ण कृष्ण के चरणारविंद में वापस लाना चाहिए, इसको बोलते अभ्यास। जहां भी भटकता है मन वहां से उनको वापस लाना चाहिए और कृष्ण के चरणारविंद में फिर से चला जाएगा, फिर से वापस लाना चाहिए, फिर से चला जाएगा, फिर से वापस। वो जितना प्रयत्न जाने भागने का करता है उससे ज्यादा प्रयत्न हमें उनको वापस लाने में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास न तू कौनते वैराग्य न च उच्यते, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च उच्यते। वैराग्य, अगर कोई बाबा के पास कुछ है ही नहीं, वैरागी है, तो उनका मन कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। लेकिन बाबा होना चाहिए, कोई भिखारी नहीं, भिखारी के पास भी कुछ नहीं लेकिन उनका मन भटकता है, क्योंकि उनको काम है, उनको लोभ है। लेकिन बाबा या तो कोई सन्यासी, वैरागी, त्यागी, उनके न किसी की स्पृहा है और कुछ उनको प्राप्त करने की इच्छा है, तो उनका मन कहाँ जाएगा, कृष्ण के चरणारविंद में फिक्स रहेगा। तो मन को अगर अपने आप में काबू में रखना है तो अभ्यास एंड वैराग्य। ये मन बड़ा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण, तो ये मन को हमेशा श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवृत्त रखना चाहिए। तो ये मन हमें हमेशा धोखा देता है। युति नाम यथा युनि, युनाम च युवतो यथा, मनो अभिरमते तद्वात, मनो में रमताम त्वयी। हे भगवान कृष्ण, जैसे एक 16 साल की युवती का मन युवक में रमता है और युवक का मन युवती में रमता है, इसी तरह मेरा मन हे श्री कृष्ण आप में रमण करो, श्री कृष्ण के चरणारविंद में हमारा मन रमे। तो ये मन की स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति। मन का कार्य ही एक है, श्री कृष्ण के चरणारविंद का मनन करना। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक सुंदर पुस्तक लिखा है, मन शिक्षा। अगर आप कभी ये मन शिक्षा पुस्तक मिले, वृंदावन में मिलेगा, मन शिक्षा, सुंदर। मन को क्या करना चाहिए, शिक्षा मन को देते हैं कृष्ण के चरणों में। तो वाचासि वैकुंठ गुणानुवर्णनम, वाचा वाणी, जीभ मुंह, वाचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अमरीश महाराज ने अपनी वाणी वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण के गुणगान गाने के लिए वाचा, वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम, ये वेग वाणी का वेग है। जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, वाचा आपको पुश करती है, प्रवृत्त करती है बोलने में, फिजूल का बोलने लगेंगे, कोई उनका मतलब नहीं है, लेकिन वाणी का दुरुपयोग करेंगे। स्वविद वराह उष्ट खरय समस्तुत पुरुष पशु, समस्तुत पुरुष पशु, ना यत कर्ण यतो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्वविद वराह उष्ट खरय समस्तुत, समस्तुति करना, बोलना, समस्तुत पुरुष पशु, ये पशु जैसे पुरुष हमेशा पशु जैसे पुरुषों की समस्तुति करते हैं। ना यत कर्ण यतो पेतो जातु नाम गदाग्रज, भगवान श्री कृष्ण का नाम उनकी वाणी वाचा नहीं करेगी, लेकिन किसकी संस्तुति करेंगे? सचिन उनने ये किया, या बड़ा प्रधान ने ये किया, या गांव में ये हुआ, या तो ये सब संस्तुति। तो वो लोग कैसे हैं? भागवत कहती है स्वविद वराह उष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। स्वविद विद खाने वाला वराह, सुवर सुकर जो विष्टा खाता है वैसा है पुरुष है। स्वविद वराह उष्ट ऊंट जैसा, ये सब फुलिस एनिमल, ये सब प्राणी ये कैसे है? मूर्ख प्राणी। तो जो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का गुणगान न गाते हुए भौतिक कथा करता है, भौतिक गाथा भौतिक वार्ता करता है, वो ये मूर्ख प्राणियों जैसा है। स्वविद वराह उष्ट खरई संस्तुतः, संस्तुति करते हैं, श्लाघा करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। संस्तुतः पुरुष पशु, पुरुष पशु पशु पुरुष जो पशु रूप में है, पशु जैसा है, गधा जैसा। स्वविद वरा उष्ट ऊंट खरई गधा, स्वविद वरा उष्ट खरई, स्व मीन्स कुत्ता, स्वविद वरा स्व कुत्ता गधा ऊंट और स्वविद वरा सुकर, ये चार प्रकार के जो जो स्टूपिड एनिमल, ऐसे मनुष्य कौन? जो समस्तुति वाचा की वाणी का उपयोग भौतिक जगत का जो वर्णन करती है वाचा, वो ये चार प्रकार के प्राणियों जैसा, बुद्धू प्राणियों जैसा है। स्वविद वरा उष्ट खरे समस्तुत पुरुष पशु नायत कर्ण यतो पेतो जातु नाम गदाग्रज नायत कर्ण यतो पेतो। उनके कानों में भगवान श्री कृष्ण की कथा वार्ता गाथा नहीं जाती, लेकिन ये पशुओं जैसे लोगों की कथा वार्ता। आज सचिन ने छक्का लगाया। समस्तुत पुरुष पशु नायत कर्ण यतो पेतो जातु नाम गदाग्रज। तो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, वाचा का एक ही उपयोग है। वो उपयोग क्या? वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण का गुणों का नाम का वर्णन करना, नहीं तो वो वाचा मेढक के जैसी है। इनके बाद का श्लोक जो आगे था स्वविद वराह उष्ट खरई, उनका उनकी वाचा मेढक की तरह है। जिह्वा सती दार्दुरिक, ये जिह्वा सती दार्दुरिक एव सूत न च उपगायति उरुगाय गाथा। जिह्वा सती वाणी जीव, असती जिह्वा क्या करती है? जिह्वा सती दार्दुरिक एव सूत न च उपगायति उरुगाय गाथा। उरुगाय गाथा श्री कृष्ण गाथा, श्री कृष्ण कथा नहीं गाती है, उरुगाय गाथा। तो वो वाणी कैसी है, वो वाचा कैसी है? दार्दुरिक मेढक, फ्रॉग बोलता है, वाणी बोलता है ड्राउ 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 मॉनसून सीजन में, और सांप आता है उनको खा जाता है। इसी तरह हमारी वाणी अगर भौतिक चीजों में लगाई तो हमें वो खा जाएगी। जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न च उपगायती उरुगाय गाथा। भगवान की गाथा में वाणी लगानी चाहिए। वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने बोल मा रे राधा कृष्ण बिना और कुछ बोल मारे। वाणी का उपयोग है राधा कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, राधा कृष्ण की कथा वार्ता करना, ये वाणी का उपयोग है। वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी का एकमात्र उपयोग, वाणी का उपयोग, वाणी हमें भगवान ने हमें वाणी क्यों दी? ताकि हम उनका गुणगान गाएं। हम उनका गुणगान गाएं, ये वाणी का उपयोग है, और कुछ उपयोग नहीं है। और कुछ भी उपयोग करोगे वो वाणी आपको बंधन में डालेगी। वैखरी वाणी बोलते हैं, वैखरी वाणी, वाणी से वाणी, वाक बाण, वाक बाण, ये वाणी आपका खून करवा सकती है। ये द्रौपदी अंधे का पुत्र अंधा, वाणी एक सेंटेंस, और कितना बड़ा कुरुक्षेत्र, कितना बड़ा युद्ध, और कितने 60 करोड़ पीपल स्लॉटर, 60 करोड़ कोटी लोग का मृत्यु, छोटी सी वाणी, एक सेंटेंस, अंधे का अंधा, बस। तो ये वाणी, वाणी को आप जगत की श्लाघा में लगाओगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की गुण की कथा में, गुण में, उनके गुण गाने में लगानी चाहिए वाणी। वाचो वेगम, वाचा का वेग कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? श्री कृष्ण भगवान का ही नाम, उनकी ही लीला वाणी से करना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि, सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। हमें 24 घंटा भगवान के नाम के गान में रुचि होनी चाहिए। भावांकुरे जने, जिनके हृदय में भाव, श्री कृष्ण का प्रेम भाव पैदा हुआ है, वो उनकी वाणी को हमेशा श्री कृष्ण के गुणगान में लगाएगा। नाम गाने सदा रुचि, वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन, हरेर मंदिर मार्जिनादौ श्रुतिम चकर अच्युत सत कथोदय। करो हरेर मंदिर मार्जिनादौ, करो। तो हाथ से ये वाणी का उपयोग, अम्बरीश महाराज ने अपनी वाणी श्री कृष्ण के गुणगान गाने में लगाई। और करो हाथ को, हाथ से क्या किया, करो हरेर मंदिर मार्जना दो, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन हर रोज करते थे। हाथ का उपयोग, सदुपयोग, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का मार्जन, सफाई, करो हरेर मंदिर मार्जना दो। तो गुरुदेव श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, सेम शब्द, वही शब्द, मार्जना दो। हाथ का उपयोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का मार्जन, यही हाथ का उपयोग है। नहीं तर अदरवाइज भागवत क्या कहती है कि सवौ करो न करे सपरिया, सवौ करो न करे सपरिया, सपरिया सेवा, सवौ करो, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा अगर ये हाथ नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है, तो वो कर सव का अपकर है, सव का मृत देह। सवौ करो न करे सपरिया कंकण वा, अगर वो हाथ, सब का हाथ, मृत देह का हाथ, डेजलिंग बैंगल्स, कड़ा से, सोने के कड़ा से सुशोभित भी क्यों ना हो, मृत देह का हाथ, सवौ करो, सब का हाथ है, सब, सवौ करो न करे सपरिया, न करे सेवा सपरिया। इसलिए अम्बरीश महाराज ने अपना हाथ श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। सवय मना कृष्ण पदारविंदयो वाचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जना दो। इस्कॉन में सबसे पहली सेवा मुझे टॉयलेट साफ करने की मिली थी, लेकिन दूसरी इमीडिएट सेवा थी बर्तन, बड़े बड़े पतीले, ये सेवा है, ये सही सेवा है, टॉयलेट साफ करना मार्जन। और दूसरी सेवा बर्तन, बड़े बड़े पतीले, संडे फिश के, संडे फिश में जाते थे हम, इंजीनियर की नौकरी करते थे, तो संडे फ्राइडे नाइट मंदिर चले जाते थे, तो संडे नाइट वापस, तो बर्तनों का मार्जन करना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, मॉप, और हाथ का उपयोग करो हरेर मंदिर मार्जना दो, ये हाथ का सदुपयोग है। लेकिन हम हाथ का उपयोग करते हैं क्या, पैदा करने के लिए, करनी करने के लिए, काम करने के लिए, फैक्ट्री में कड़ी मजूरी करने के लिए करना चाहिए ये भी, लेकिन हरेर मंदिर मार्जन भी इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है। भगवान के मंदिर का मार्जन करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। धन्य धन्य है आपको, धन्य धन्य है जिनको ये शिष्टा अष्टक आता है। आप सब ये शिष्टा अष्टक कंठस्थ करो, शिष्टा अष्टक, ये चैतन्य महाप्रभु का शिष्टा अष्टक और सद्गोस्वामियों का सद्गोस्वामी अष्टक और गुरु अष्टक, ये तीनों अष्टक एक साल में आपको कंठस्थ होने चाहिए। शिष्टा अष्टक चैतन्य महाप्रभु का गुरु अष्टक और सद्गोस्वामियों का सद्गोस्वामी अष्टक, ये वैष्णव गीति इसमें आपको मिलेगा, वैष्णव गीत, वैष्णव आचार्यों के गीत। ये तीनों अष्टक आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आपका जल्दी कल्याण नहीं होगा। क्या ध्यान दो, जब तक ये तीन अष्टक आपको कंठस्थ नहीं है, समझोगे नहीं तीन अष्टक, तब तक आपका आत्यंतिक कल्याण, भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ये है, करो हरेर मंदिर मार्जना दो, चेत दर्पण मार्जनम, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, टॉयलेट मंदिर में साफ करना, ये प्रभुपाद जी कहते हैं अपने मन का मार्जन, चित्त का, चेत दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। इससे हम अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करने से क्या होता है, हमारे मन रूपी मिरर का मार्जन होता है, मन हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। करोर हरेर मंदिर मार्जना दो, श्रुतिम चकर सत कथोदय, श्रुतिम चकर अच्युत सत कथोदय, श्रुतिम सुनना, कान ये श्री कृष्ण की सत कथा सुनने में प्रवृत्त किया अमरीश महाराज ने, सत कथोदय, बिले बत उरुक्राम विक्रमान्ये न सुनवती उरुगाय गाथा, वो कान श्रुतिम, वो कान सांप के बिल के बराबर है, सांप के बिल को सुनाई नहीं देता। इसी तरह जो भौतिक जगत की जंजाल सुनता है कान, तो वो कान सांप के बिल के बराबर है। बिले बत उरुक्रम विक्रमान्ये न च उपगाय न सुणवत कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सति दार्दुरिकेन सुत न च उपगायति उरुगाय गाथा। बिले बत वो कान श्रुतिम चकर अच्युत सत कथोदय, वो कान जो भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण लीला रूप धाम का गुणगान नहीं कर सुनता, वो कान बिल जैसा है, न सुनवत कर्ण पुटे नरस्य, न सुनवत सुनता नहीं, भौतिक जंजाल सुनता है वो सुनना नहीं है, वो अधोगति है। लेकिन कान का सदुपयोग क्या है, श्रुतिम चकर अच्युत सत कथोदय, कान से श्री अच्युत भगवान श्री कृष्ण की गुण गाथा कथा सुनना चाहिए, अगर नहीं सुनता है कान भगवान की गुण गाथा तो वो कान कैसा है, बिले बतो उरुक्रम विक्रमान्ये न सुनवतः कर्ण पुटे नरस्य। सांप के बिल बराबर है। तो हम आगे कल बढ़ेंगे।